శ్రీచైతన్య మనోవేస్తాం సావధాన భూతలే వందేహం శ్రీగురు. సాద్వైతాం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ శ్రీరాధా కృష్ణపదాన్ సహగణ. హే కృష్ణ కరుణాశ దీనబంధు జగత్పతే, తప్త కాంచన సప్త కంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి ఋషభాను. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర. హరే కృష్ణ. హమారే వేదిక శాస్త్రం కే అనుసార చైతన్య మహాప్రభు జీ స్వయం భగవాన్ హై. జైసే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కహ రహే హై, వో ఢకే హుయే భగవాన్ హై. దూసరే శబ్దో మే వో ప్రకట్ హుయే హై భక్త్ కే రూప్ మే. కిస్ లియే? హమే శిక్షా దేనే కే లియే కి కిస్ ప్రకార్ భక్తి కర్నీ చాహియే. భగవాన్ కే అనేక అవతార హై, ఇన్ అవతారో కా వర్ణన్ ఆప్ శాస్త్ర మే ప్రాప్త్ కర్తే హో. ఔర్ చైతన్య మహాప్రభు జీ కే విషయ మే కహా జాతా హై, సబ్ అవతారో మే సబ్సే దయాలు అవతార హై. అద్వైతాచార్య మహావిష్ణు కే అవతార హై. వో జబ్ భగవాన్ ప్రకట్ హోతే హై, ఉన్కే హీ సనాతన్ సాథీ साथ में प्रकट होते हैं, पर कई उनसे पहले भी प्रकट हो जाते हैं. जैसे जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे तो मदर यशोदा, वासुदेव देवकी, नंद महाराज, बालराम पहले प्रकट हो गए थे और भगवान बाद में प्रकट हुए. उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले उनके सनातन साथी भी प्रकट हो गए थे. ఉదాహరణ కే అద్వైతాచార్య. అద్వైతాచార్య జ సమాజ కి స్థితి దేఖి, దేఖా కి కితనా బిగడా హువా సమాజ హై. శుద్ధ భక్తి మే లగభగ కిసీ కి రుచి నహీ థీ. లోగ్ జుడే హుయే థే కర్మకాండ ఇత్యాది కార్యో మే. అద్వైతాచార్య దేఖా సమాజ కి స్థితి, उन्होंने सोचा कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए. अद्वैताचार्य ने भगवान कृष्ण की उपासना की, तुलसी के पत्ते अर्पण किए, गंगा का जल अर्पण किया और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भगवान आप स्वयं प्रकट हो जाओ पतितों का उद्धार करने के लिए. అద్వైతాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ దిన రాత్ భగవత్ కా స్మరణ కి చర్చా కర్తే థే. పర్ దోనో కి యే ఇచ్ఛా థీ కి భగవాన్ ప్రకట్ హో జాయే, కిస్ లియే? పతితో కా ఉద్ధార్ కర్నే కే లియే. ఇస్లియే నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ కహతే హై, పతిత్ పవన్ హేతు తవా బతారా, ఆప్ అవతారిత్ హుయే హో కిస్ లియే? పతితో కే ఉద్ధార్ కే లియే. ఆప్ కహోగే హమ్ పతి థోడే హై, हम तो ब्राह्मण कुल के जो हैं. शास्त्र में कहा गया है कल शुद्ध संभव सभी पतित हैं. तो द्वैताचार्य ने बड़े गहराई के साथ, श्रद्धा के साथ उपासना की भगवान की, इस भाव के साथ स्वयं भगवान प्रकट हो जाए। अद्वैताचार्य के अलावा अनेक और भक्त भी वो पहले प्रकट हो गए सनातन साथी। उदाहरण के लिए उपेंद्र मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, दिनमरा चक्रवर्ती, सची माता, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, ये भी प्रकट हो गए भगवान से पहले। उपेंद्र मिश्रा के 7 बेटे थे। उनका जन्म रहने का स्थान था बांग्लादेश, एक शहर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का बड़ा गहरा संबंध है वैष्णव सिद्धांत के साथ। हमारे कई आचार्य प्रकट हुए थे बांग्लादेश में और कईयों की समाधि भी बांग्लादेश में। तो उपेंद्र मिश्रा के 7 बेटे थे, जिसमें एक बेटा था जगन्नाथ मिश्रा, जिसकी शास्त्रिक अध्ययन में बड़ी गहरी रुचि थी। तो वो स्थान छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर, वो आए नवदीप धाम में। आज से लगभग 500 साल पूर्व नवदीप शहर जो था विश्व के सारे सबसे बड़े विद्वान संस्कृत के वहाँ निवास करते थे और चर्चा करते थे आध्यात्मिक विषयों की। तो जगन्नाथ मिश्रा उपेंद्र मिश्रा के बेटे थे, वो नवद्वीप में आए दिलम्बरा चक्रवर्ती से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दिलम्बरा चक्रवर्ती बहुत ऊंचे कोटि के विद्वान भी थे और ज्योतिषी भी थे, एस्ट्रोलॉजर। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उन्हें शिक्षा दी। देखा कि जगन्नाथ मिश्रा में अनेक दिव्य लक्षण है, दिव्य भाव है। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्या था, सची माता। उसका विवाह कर दिया किसके साथ, जगन्नाथ मिश्रा के साथ। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता हैं वासुदेव देवकी के अवतार। फिर माधवेंद्र पुरी, कुछ दिन पहले हमने माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव तिथि मनाई थी। माधवेंद्र पुरी उस समय के बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, भगवान की सेवा। परमहंस भक्त थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो स्वीकार करते थे और नहीं तो भूखा रहते थे। और माधवेंद्र पुरी ने एक समय गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी, जब वो भूखे थे। एक सुंदर ग्वाले ने उन्हें दूध दिया और इतना सुंदर बालक उन्होंने कभी देखा नहीं था, इतना मधुर कंठ कभी सुना नहीं था। और फिर उसी बालक ने सपने में आदेश दिया कि मुझे यहाँ छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है, मुसलमानों के हत्याचार से बचाने के लिए मेरी स्थापना करो। माधवेंद्र पुरी का ऐसा भाव था, एक समय भगवान ने आदेश दिया चंदन लेकर आओ मेरे लिए। तो 2000 मील की यात्रा की उन्होंने पैदल भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। अगर आपको कहा जाए राधा राज बिहारी के लिए चंदन लाओ 2000 मील की यात्रा करके, आप कहोगे स्वामी हमें तो प्लेन की टिकट दो तो हम जाएंगे। और माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं कहा प्लेन की टिकट या गाड़ी की टिकट, पैदल गए। तो माधवेंद्र पुरी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त है और अद्वैताचार्य ने भी उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। और माधवेंद्र पुरी के पश्चात के एक साथ उनके एक और शिष्य थे ईश्वर पुरी, जो कि महाप्रभु के गुरु बने। तो ये सनातन भक्त हैं, प्रकट हुए थे भगवान के प्रकट होने से पहले। इसके अलावा भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके भाई कभी बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में आते हैं, जैसे लक्ष्मण जी के राम के समय लक्ष्मण छोटे भाई के रूप में आए, बालराम जी आए बड़े भाई के रूप में, उसी प्रकार भगवान नित्यानंद भी प्रकट हुए थे पहले और विश्व रूप। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले उनकी माता ने 8 बेटियों को जन्म दिया था, जिनका पैदाइशी में ही देहांत हो गया। भगवान ने प्रकट होना था तो जैसे हमने कहा, भगवान अपने भक्तों को ही चुनते हैं माता पिता के रूप में, जैसे कि वासुदेव देव की, उन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बहुत ही गहरी तपस्या उठाई थी, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, केवल पत्ते जो पेड़ से गिरते थे और हवा, और दिन रात उनका चिंतन था हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में, और जिसके उत्तर में भगवान प्रकट हुए। तो इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्रा सच्ची माता, उनके भी दिव्य भाव थे, और भगवान कैसे प्रकट हुए। साधारण व्यक्ति जन्म लेता है संबंध के कारण, पति पत्नी का संबंध होता है और संतान उत्पन्न होती है, पर महाप्रभु का जन्म उस प्रकार का नहीं था। महाप्रभु प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से, सच्ची माता के हृदय में, सच्ची माता के हृदय से उनके गर्भ में, और फिर शुभ अवसर पर जबकि पूरा समाज जुड़ा हुआ था भगवान के नामों के उच्चारण करने में, उस शुभ अवसर पर भगवान प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए उन्हें अनेक नाम दिए गए, दिनम्बरा चक्रवर्ती जो उनके नाना जी थे, उन्होंने उनकी जो जन्म पत्री बनाई, जिसमें उन्होंने देखा कि ये तो बच्चा है, साधारण बच्चा नहीं, ये तो नारायण है, चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हो देवी व्यक्ति के 32 गुण लक्षण होते हैं। जिनम्बर चक्रवर्ती ने देखा कि सारे 32 लक्षण प्रकट हैं, किसमें इतने महाप्रभु ने, उनके अनेक नाम थे, एक द गौर हरि, उनका सुनार का रंग था, सदा हरि का नाम लेते थे। जब वो छोटे थे, पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, रोते थे जानबूझकर, पड़ोस की औरतों को पता था कि जब वो हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे तो ये बच्चा रोना बंद कर देगा। इस प्रकार उन्होंने बचपन से ही दूसरों के द्वारा हरिनाम करवाया। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उनकी जन्मपत्री बनाई, जिसके द्वारा वह समझ पाए ये लड़का तो साधारण लड़का नहीं है, ये तो नारायण है। उन्होंने देखा कि सारे 22 दिव्य लक्षण उनके शरीर में प्रकट है, और उन्होंने उन्हें एक नाम दिया विश्वम्बर। विश्वम्बर का अर्थ क्या, क्या अर्थ है, पूरे सृष्टि को संभालता है, भगवान ही पूरे सृष्टि को संभालते हैं, भगवान ही हर चीज के कारण है। एक और नाम उन्हें दिया गया था निमाई, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, और ये भी माना जाता है कि दीन द्वारा कोई अशुद्ध भाव हो, विचार हो, वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सची माता की आठ बेटियों का पैदाइशी में वध हो गया था, तो भक्तों की इच्छा थी कि वो बचे। तो महाप्रभु ने छोटी आयु में ही दिव्य लीला प्रकट करना आरंभ किया। जैसे कृष्ण भगवान की लीलाओं को आप देखो तो आप देखते हो ये अद्भुत लीलाएं हैं। साधारण समाज में अगर आप ये शिक्षा दो कि छोटे से बच्चे ने एक पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, लोग क्या कहेंगे आज के आधुनिक समाज में? माइथोलॉजी, इमेजिनेशन, ये हिंदू शास्त्रों की कल्पना है। जैसे जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुसलमानों का शासन था, उन्होंने तो कई हिंदू मंदिर तोड़वा दिए, पर अंग्रेजों के शासन में मंदिर नहीं तोड़े। पर उनके विद्वान आए जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उसके पश्चात ग्रंथों का अनुवाद किया, ये स्थापित करने के लिए ये सिद्धांत में कुछ दम नहीं, ये सिद्धांत कल्पना है। तो कई भारतीयों का भी विश्वास टूट गया, उन्होंने कहा वो पीएचडी कह रहा है कि ये कल्पना है तो कल्पना ही होगी। तो इसलिए कईयों का विश्वास टूट गया। तो साधारण व्यक्ति जब इन लीलाओं को सुनेगा तो क्या कहेगा? असंभव है। जैसे आप किसको कहो, छोटे 7 साल के बालक ने एक बड़े पर्वत को उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर, कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। भगवान प्रकट हुए आधे पुरुष आधे पशु के रूप में। एक समय इसको उनका एक कोर्ट केस चल रहा था अमेरिका में, तो सामने की पार्टी नृसिंहदेव भगवान की फोटो लेके आई कोर्ट में, माय लॉर्ड दिस इज देयर गॉड, हाफ मैन हाफ मैन। और बहुत ही बहुत ही जूरी ने कहा ये तो प्रमाणिक नहीं देखता। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए सेवा का भाव चाहिए। भौतिक इंद्रियों से आप भगवान की शिक्षा को नहीं समझ पाओगे। तो जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अद्भुत लीला पकड़ ली, अद्भुत किस दृष्टि से, इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता, चाहे कोई देवता हो या देवी हो, कोई इन लीलाओं की तुलना नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्भुत लीला प्रकट की। एक समय एक ब्राह्मण था यात्री, जो कि जगन्नाथ मिश्रा के घर में आया था। जगन्नाथ मिश्रा बकायदा संतों की सेवा करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें भोजन दिया खाने के लिए। ब्राह्मण अक्सर अपना प्रसाद खुद बनाते हैं, तो इस ब्राह्मण ने प्रसाद बनाया, भोग लगा रहा था, जब शैतान निमाय ने आकर उसे झूठा कर दिया। ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रहा हूं। जंगल में से कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, ये बड़ा अपमान होगा अगर तुम भूखे रहो। तो फिर से बनाया, फिर से झूठा कर दिया। तीसरी बार बाप ने कहा, घबराओ मत, अभी मैं बेटे को दूर बंद कर देता हूँ। और दूरी पर बंद कर दिया, काम बनाओ। लगभग रात हो गई थी, गहरी रात, सब सोए हुए थे। और तीसरी बार जब फिर से भोग लगा रहे थे तो ये निमाई फिर से वहां पहुंच गया। जब इस ब्राह्मण ने देखा तीसरी बार, ब्राह्मण का फिर से आ गए, कहां से आ गए, तुम्हारे पिता ने तो कहा था तुम्हें बंद कर दिया है। तो निमाई ने कहा, अभी भोग किसको लगा रहे हो, मुझे तो लगा रहे हो, चिंता क्या है? फिर उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया और कहा, किसी को ये सूचना मत देना कि तुमने मेरा दर्शन प्राप्त किया। एक समय भगवान जब छोटे थे तो उनका शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ, तो दो चोरों ने उन्हें चुरा लिया, कंधे में बिठाया और ले जा रहे थे दूर जंगल में, इन भाव के साथ उनको मार देंगे और गहना इत्यादि चुरा लेंगे। और जब ही वो प्रयास कर रहे थे दूर भागने के लिए, भगवान की शक्ति द्वारा वो वापस लौट कर जगन्नाथ मिश्रा के घर में पहुंच जाते थे। और जब जगन्नाथ मिश्रा सची माता ने देखा वहां बेटा बाहर खेल रहा था, कहा गुम हो गया है, सब घबरा गए, घर में सब घबरा गए, ढूंढने लगे कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा। तो जब भगवान लौटे चोरों ने एकदम बच्चे को वहां छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उनकी अनेक लीलाएं हैं। जब वो छोटे थे एक समय खेलते समय वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो वहां कई पिल्ले थे, पपी डॉग, और भगवान ने जो सबसे खूबसूरत पिल्ला था उसे उठा लिया और वो पिल्ले को अपने घर में ले गए। उनके दोस्तों ने कहा निमाई, दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, तुमने सबसे खूबसूरत पिल्ला ले लिया अपने लिए, हमारे लिए बदसूरत पिल्ला छोड़ गए, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। और निमाई पिल्ले को घर ले आया, वो बड़े प्रेम से पिल्ले के साथ खेल रहे थे, पिल्ले को बिठा रहे थे। सची माता ने कहा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में पिल्ला, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम इस पिल्ले को घर के बाहर रख दो। निमाई ने कहा अगर आप घर के बाहर पिल्ले को भेजोगे तो मैं भी घर के बाहर चले जाऊंगा। तो सची माता को और कुछ उपाय नहीं था, निमाई बड़े प्रेम से इस पिल्ले के साथ खेलता था। एक दिन निमाई जब गए थे स्नान करने के लिए गंगा में, तो उनकी माता ने निमाई पिल्ले को कुर्सी के साथ बाया बांध कर गए थे स्नान करने के लिए। वो जब तो गंगा सची माता ने गांठ खोलकर पिल्ले को छोड़ दिया, पिल्ला घर के बाहर चला गया। निमाई के मित्रों ने कहा, दौड़ कर गए निमाई का मित्र, निमाई निमाई तुम जानते हो क्या हुआ है? नहीं, तुम्हारी माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया है, और पता नहीं वो पिल्ला कहाँ घूम रहा है। तो सब ढूंढने लगे कहाँ है वो पिल्ला। फिर उन्होंने देखा वो पिल्ला दो पैरों में नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठा रहा था, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे, आंसू बह रहे थे नेत्रों से, और उनका शरीर कांप रहा था भक्ति के कारण। वो बड़े और वो पिल्ला हरे कृष्ण गोविंदा हरे कृष्ण गोविंदा का कीर्तन कर रहा था। तो सारा शहर आकर्षित हो गया, सारा शहर आश्चर्यचकित हो गया, पिल्ला भगवान का नाम ले रहा है, नाच रहा है शुद्ध भक्ति के लक्षण को प्रकट करते हुए। और सबके समक्ष भगवान के धाम से एक रथ आया, जिसमें वो रथ आया किस लिए, पिल्ले को लेने के लिए, और पिल्ला सबको बाय बाय बोलते बोलते भगवान के धाम गया। तो सब कहने लगे देखो निमाई में कितनी शक्ति है, पिल्ले को भी भक्त बना दिया। तो अगर आप कहो या सोचो अगर निमाई पिल्ला रख सकता है तो हम भी रख सकते हैं। अगर आपने पिल्ला रखना है तो आपको गारंटी लेना पड़ेगा, कि आप पहले से हरि नाम करवाओगे और पहले को शुद्ध भक्त बनाओगे। अगर ये गारंटी नहीं ले सकते तो ज्यादा बेहतर है आप नहीं कर। तो छोटी आयु से ही निमाई ने अनेक दिव्य लक्षण प्रकट करने आरंभ कर दिए थे। जैसे मैंने कहा कुछ समय पहले, उस समय नवदेव धाम बड़ा ऐतिहासिक स्थान था, जहाँ की अनेक पंडित निवास करते थे। उन दिनों में एक संस्कृत के बड़े विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी का एक और नाम था दिग्विजय। उन्होंने सबको संस्कृत भाषा के डिबेट में हराया हुआ था। जैसे आजकल क्रिकेट कंपटीशन होता है यहाँ जो स्पोर्ट, उन दिनों में विद्वानों की डिबेट होते थे देखने के लिए किसका ज्ञान ज्यादा अधिक है। तो नवदेव धाम में सारे पंडित थे प्रसिद्ध, और केशव कश्मीरी ने भारत के सब पंडितों को डिबेट में हरा दिया था। तो केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी नवदेव के पंडितों को कि मैं आपके शहर में आना चाहता हूं आपके प्रतिनिधियों से डिबेट करने के लिए। तो उन्होंने एक सभा बुलाई पंडितों ने, केशव कश्मीरी हमारे शहर में आना चाहता है हमारे प्रतिनिधि से डिबेट करने के लिए, आप हम में से कौन उसके आगे खड़े होगा। सब घबरा गए, केशव कश्मीरी का नाम सुनते ही सब डर जाते थे। सबने कहा हम तो नहीं जाएंगे उनके सामने, सबने इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम हमारे शहर के जो सबसे छोटे पंडित हैं, निमाई 11 साल की आयु में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया था, और इस पाठशाला में वो बड़े ध्यान से ग्रामर सिखाते थे कृष्णा से जोड़कर। उनके हजारों विद्यार्थी बन गए थे, इसलिए उनका एक और नाम था निमाई पंडित। पंडित आजकल तो आपको पंडित जी मिलते हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पर पंडित का अर्थ है इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान हो और आचरण भी हो, आचरण भी, ये नहीं केवल ज्ञान। तो निमाई पंडित छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध पंडित बन गए थे। और जब सूचना मिली केशव कश्मीरी उनके शहर में आना चाहता है, सब घबरा गए। फिर उन्होंने ये निर्णय किया हमारे शहर के जो सबसे छोटे पंडित है निमाई पंडित, उनको हम दिग्विजय के सामने रख देंगे। अगर तो निमाई ने दिग्विजय को हरा दिया तो हम कहेंगे जब हमारे शहर का बच्चा हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो, और अगर किसी हालत में दिग्विजय ने हरा दिया निमाई को, हम कहेंगे आखिर हमारे शहर के बच्चे को हराया उसने, हमें थोड़ी हराया है ना। तो दिग्विजय, और दिग्विजय जो थे ज्ञान था पर भक्ति की कमी थी, सारस्वती के बड़े उपासक थे, और वो ये चर्चा डिबेट करते थे स्थापित करने के लिए कि मैं देखो कितना विद्वान हूं, सारस्वती देवी के भक्त थे। केशव कश्मीरी अपने भक्तों के साथ आ रहे थे नवदेव, जब निमाई उन्हें मिले जो कि गंगा के तट पर बैठकर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। केशव कश्मीरी ने कहा आप ही हो वो पंडित जिसकी इतनी प्रशंसा सुनी है। निमाई ने कहा पता नहीं लोग प्रशंसा क्यों करते, मैं तो एक शब्द भी ठीक नहीं बोल सकता। खैर दोनों की चर्चा हुई, और निमाय के कहने पर केशव केशवी ने गंगा की प्रशंसा की, 100 श्लोकों की रचना की, मिनटों में 100 श्लोकों की रचना की और इतनी तेजी के साथ। फिर उन्होंने निमाय से पूछा, तो कैसे लगा मेरी रचना? निमाय ने कहा, बहुत ही सुंदर। फिर जब निमाय ने एक श्लोक का उच्चारण करके सुनाया तो केशव केशवी आश्चर्य हो गए थे, कहने लगे, मैंने तो वायु की तेजी से 100 श्लोकों की चर्चा की थी, इस तेजी के साथ की थी, तुमने एक श्लोक को कंटेस्ट कैसे कर लिया? शास्त्रों में श्रुति धारा शब्द आप पढ़ते हो, श्रुति का अर्थ है सुनना, धारा का अर्थ है कब्जा कर लेना। तो श्रुति धारा उसे कहते हैं जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही कंटेस्ट कर लेता है। जैसे शुकदेव गोस्वामी जब भागवत का उपदेश दे रहे थे परीक्षित महाराज को, उस सभा में हजारों भक्त उपस्थित थे, जिनमें एक सूतक स्वामी नाम का भक्त भी उपस्थित था। और जब नमश्रानी में संतों ने उनसे मार्गदर्शन पूछा तो उन्होंने वही 18,000 श्लोक जो उन्होंने सुने थे सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से, उन्होंने एक बार सुनने से एक कंठस्थ कर लिया। तो प्राचीन समय में लगभग सभी श्रुति धारा थे, और आज की स्थिति में हम बार बार पढ़ते तो भी भूल जाते हैं, यादाश्त इतनी कमजोर है। तो ये केशव केशवी आश्चर्य हो गए थे ये देखकर, इस छोटे लड़के ने इतनी एक बार सुनने से ही श्लोक को कंटेस्ट कर लिया। फिर निमाई ने केशव केशवी ने पूछा, क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं? निमाई ने जब कमियों और गुणों की चर्चा की, केशव केशमीरी हर पद हर विषय का उत्तर नहीं दे पाए। निमाई के जो विद्यार्थी थे, क्योंकि ये सभा चल रही थी निमाई की क्लास में, निमाई के विद्यार्थी थे वो जरा हंसने लगे, हंसी उड़ाने लगे केशव केशमीरी निमाई के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। तो निमाई ने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, नहीं, केशव केशवी अभी थका हुआ है, कल उतर देगा। और केशव केशवी जब घर गए, उन्होंने सरस्वती के उपासक थे, तो सरस्वती से पूछा, प्रार्थना की कि आप हमेशा मेरी सुरक्षा करते आए हो, आज आपने बिल्कुल सुरक्षा नहीं की, क्या कारण है? सरस्वती ने कहा, ये जो बालक है निमाय पंडित, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है। तो अगले दिन केशव केशमिनी समर्पण हो गए किसके चरणों में? निमाई के चरण में। निमाई जो थे, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पाठशाला भी खोली थी एक, और अपनी पाठशाला में रोज जाते थे पढ़ाने के लिए। पर रास्ते में एक व्यापारी था जिनसे उनका बड़ा गहरा संबंध था, और वो व्यापारी का नाम क्या था? खोला भाई श्रीधर। आप जैसे बड़े व्यापारी नहीं थे, छोटा व्यापारी था, केले के पत्तों के प्याले बनाना, जब लोग जाते हैं गंगा में फूल अर्पण करने के लिए। दिन रात खोला भाई श्रीधर भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे, ये कुलवज श्रीधर खुद भी सोता नहीं, हमें भी सोने नहीं देता, ये सारी रात वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। पड़ोसी कहते थे लगता है भूत सता रहे हैं इस व्यक्ति को, क्योंकि इसने ये कुछ खाता नहीं है, गरीब आदमी है। तो निमाय रोज उनकी दुकान में जाते थे, अपने पाठशाला में जाने से पहले, और पूछते थे तो आज का केले का क्या भाव है, इसका क्या भाव है। और केला वो खोला वजह सीधा जो कहते थे, फिर आगे कहते थे ये तो बहुत महंगा है, तुम बहुत नफा बना रहे हो, इतना नफा मत बनाओ। खोला वजह सीधा कहते थे अगर तुम्हें लगता है मेरे भाव ऊंचे हैं तो दूसरी दुकान में चले जाओ, क्यों आते हो मेरा सिर खाने के लिए रोज। तो निमाई कहते थे मैं क्यों दूसरी दुकान में जाऊं, तुम अच्छे सप्लायर हो, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितना धन है। खोले वजह श्रीधर जैसे हमने कहा दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, और उनमें त्याग की भावना थी और सेवा की भावना थी। अपने छोटी आमदन का 50% वो खर्चते थे किसकी सेवा में, गंगा की सेवा में। रहने के लिए उनके घर में एक ही कमरा था जिसमें कोई छत भी नहीं थी, फैलने के लिए उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 11 छेक थे, अंदाजा लगाओ। जब बारिश आती थी वो दीवार के साथ चिपक जाते थे, जब भी उन्होंने सेवा नहीं रोकी। उनके घर में एक ही टूटा हुआ बर्तन था जिसमें वो पानी पीते थे और भोजन खाते थे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि वो बर्तन इतना टूटा हुआ था कि कोई चोर भी उसे नहीं चुराए। इतनी बुरी स्थिति में। तो इस प्रकार निमाई का रोज वर्तलाप होता था कि खोले वजह श्रीधर के साथ। निमाई कहते थे मुझे पता है तुम बड़े धनी हो। तो खोला वजह श्रीधर कह रहा तो मेरे घर में आके देख के नहीं लेते मेरे पास कितना धन है। निमाई कहते थे एक दिन मैं तुम्हारे सारे विश्व को सुनाऊंगा, बताऊंगा तुम कितने धनी हो। तो क्या था निमाई का भाव, आध्यात्मिक दृष्टि से ये धनी थे। जब निमाई ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवास आंगन में, शिवास आंगन शिवा जी का घर हमारे मायापुर मंदिर के निकट ही है। शिवास आंगन में महाप्रभु ने जब अपना, पहले तो महाप्रभु बड़े शैतान थे, फिर वो संस्कृत के विद्वान बने, फिर उन्होंने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। शिवास आंगन में कीर्तन कर होते रहता था 8-8, 9-9 घंटे एक साथ। और एक समय जब कीर्तन हो रहा था तो भक्तों को भूख लगी। भक्तों ने कहा भूख लगी है, आम की इच्छा है। तो चेतन महाप्रभु ने एक आम का बीज बो दिया जो मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया जिसमें 200 पके हुए आम थे, पके हुए। इन आमों में ना घुटली थी ना छिलका। आपने ऐसा आम देखा है कभी? नागपूर्णी हो आपूस कहते हैं मामे में, आप बोलो बाजार में हमें आपूस चाहिए जिसकी घुटली भी नहीं हो और चमड़ा भी नहीं है। 200 आम रोज वो पेड़ देते गया और महाप्रभु के साथ ही कीर्तन के पश्चात थक जाते थे। जब थकते थे तो 200 आम वो पेड़ रोज देते। एक आम इतना भारी था पेट भरने के लिए काफी था। एक आम तो एक आम से पेट भर जाता था भक्तों का। इस प्रकार एक साल के लिए ये लीला बीती, वे वो पेड़ अप्रकट हो गया। तो महाप्रभु ने जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवा सांगन में, और शिवा सांगन में जब प्रचार कर रहे थे, केवल जो उनके प्रिय निकट के भक्त थे उन्हें ही अधिकार था ये दर्शन लेने के लिए। एक ब्राह्मण था जो बड़ा तपस्वी था, केवल दूध पीता था और फल खाता था और कुछ नहीं। तो वो श्रीवास को बार बार कह रहा था, मैं दर्शन लेना चाहता हूं महाप्रभु की अद्भुत कीर्तन का। और श्रीवास ने कहा, मैं ये नहीं दिखा सकता, मुझे इजाजत नहीं है दूसरों को बुलाने के लिए। पर ये ब्राह्मण ने बड़ी जिद की। श्रीवास ने अच्छा ठीक है, वो दीवार के पीछे एक छोटा सा छेक बना लो दरवाजे में, वो छेक से देखना तुम महाप्रभु की दिव्य लीला को। तो महाप्रभु नाच रहे थे अपने भक्तों के साथ, कीर्तन कर रहे थे, एकदम रुक गए। यहां कोई है जिसे नहीं होना चाहिए? श्रीवास ने घबरा कर कहा, हाँ हाँ एक ब्राह्मण है जो बड़ा तपस्वी था, केवल दूध के सहारे जी रहा है, जिसकी इच्छा थी आपके दर्शन, आपके दिव्य कीर्तन का दर्शन ले। महाप्रभु ने कहा, केवल तपस्या द्वारा थोड़ी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, दूसरे शब्द में शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन गया। तो महाप्रभु ने जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवदेव धाम में, जो मुसलमान थे उन दिनों में मुसलमानों का शासन था। बड़ी अजीब बात है, प्रजा लगभग हिंदू थी, 0.5% आबादी मुसलमान थी, पर जब भी उनका शासन था। बड़े आश्चर्य की बात है, हिंदू लोग बड़े डरपोक होंगे उस समय। बड़े कोई कई बार मैं सोचने गहराई से देखता हूँ, समझ नहीं आता। आबादी लगभग 99% हिंदू थी उस समय, और जब भी इन्होंने कब्जा कर लिया और अनेक हिंदुओं को मुसलमान बना दिया लाखों को। तो मुसलमानों का शासन था, वो अधिकारी थे उधर के चांदकाजी। तो मुसलमानों ने कहा चांदकाजी के बजाकर, दिमाग के संकीर्तन आंदोलन को रोको, नहीं तो सारे मुसलमान यहां हिंदू बन जाएंगे। एक अधिकारी था दाढ़ी के साथ, वो गया था बोलने के लिए, रोको रोको ये हरे हरि नाम कीर्तन को। उसकी दाढ़ी जल गई आग के साथ। एक और मुसलमान था जो बार बार जाकर चांदकाजी से कहता था, रोको इस हरि नाम को, नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो काजी ने एक दिन पूछा, जब भी तुम आते हो मेरे पास शिकायत करने के लिए, मैं देखता हूं कि तुम हरि नाम कर रहे हो, ये क्या बात है? एक तरफ से शिकायत करते हो, रोको 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 हरि नाम आंदोलन को, दूसरी तरफ से हरि नाम कर रहे हो। तो इस मुसलमान ने कहा, ये बात सच है, जब से मैंने निमाई के द्वारा हरि राम सुना है, ये झड़ी नाम जीप से निकलता ही नहीं। तो मुसलमानों ने तो शिकायत की थी, पर आश्चर्य की बात है हिंदुओं ने भी की, क्योंकि जो स्मार्ता ब्राह्मण थे जिनकी कमाई थी जो कमा रहे थे पैसा यज्ञ वगैरह करके, उनका तो धंधा ठप हो गया। क्योंकि निमाई के सब की तरह दौलत में कोई यज्ञों की जरूरत ही नहीं। तो हिंदुओं ने भी शिकायत की काजी से, अरे ये जो धर्म निमाई कर रहा है ये असली धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, ये तो कोई बनावटी धर्म है। मुझे याद है कि जब इस्कॉन के भक्त पहले इंडोनेशिया में गए थे प्रचार करने, तो वो अमेरिकन भक्त है, तो उस भक्त ने स्पष्ट कह दिया व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो इंडोनेशिया के हिंदू समाज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने शिकायत सरकार से झूठी शिकायत कर दी, इस्कॉन वाले असली हिंदू नहीं है, नकली है, इनको नहीं आने दो। तो हिंदुओं ने भी शिकायत की कि निमाई जो आंदोलन कर रहा है ये तो बनावटी धर्म है। तो चंद काजी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा और कहा बोल दो संकेत नहीं बदलेंगे, बंद करेंगे। तो सबकी संपत्ति को हड़प कर देंगे, सरकार ले लेगी और सारे हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनना बड़ा आसान था, अगर आपने मुसलमान के घर में भोजन खा लिया चलो पता कट गया, मुसलमान बन गए। अगर मुसलमान की बाल्टी से पानी का एक बूंद भी आ गया आपके शरीर पर तो मुसलमान बन गए। एक समय एक राजा थे हुसैन शाह, एक दिन हुसैन शाह पहले तो वो साधारण गरीब थे, सेवक थे एक धनी व्यक्ति सुबुद्दी रॉय के, जो सुबुद्दी रॉय बहुत बड़ा जमींदार था। तो बचपन में सुबुद्दी हुसैन शाह ने कुछ गलती की थी जिसके कारण सुबुद्दी रॉय ने प्रेम से चाबुक मारा था जिसका एक निशाना रह गया। तो चापलूसी करके सुबुद्दी रॉय ये हुसैन शाह जो नौकर था वो सेठ बन गया, बड़ा जमींदार, और सुबुद्दी रॉय गरीब हो गए। तो जब उसकी पत्नी हुसैन शाह की पत्नी ने देखा लकीर का निशाना, उसने पति से पूछा अरे ये निशाना कहां से आ गया? तो उसने कहा बचपन में मैंने गलती की थी। तो हुसैन शाह ने तो सुबुद्दी रॉय ने प्रेम से मारा था जिसका यह निशाना है। अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो और मार दो सुबुद्दी रॉय को, क्या हिम्मत थी उसमें ये करने की? तो हुसैन शाह ने कहा नहीं मैं कैसे मारूं, उसने तो मुझे बच्चे जैसा पाला था, ये छोटे से अपराध के लिए मैं मारने को तैयार नहीं। पत्नी ने कहा अच्छा मारना नहीं चाहते तो मुसलमान तो बना दो। तो हुसैन शाह ने कहा ठीक है। तो हुसैन शाह ने सुबुद्दी रॉय को बुलाया और अपनी बाल्टी से पानी, तो सुबुद्दी रॉय मुसलमान बन गया। घर वालों ने कहा घर के बाहर जाओ, घर में नहीं रह सकते। तो एक रूप से सुबुद्दी रॉय प्रसन्न था, सब समाज उससे जुदा हो गया, पर वो जरा विचलित था अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सुबुद्दी रॉय ब्राह्मणों की सभा में पहुंचे वाराणसी में, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा उबलते हुए घी को पीकर आत्महत्या कर लो। फिर सुबुद्धि रॉय पहुंचे महाप्रभु के पास। महाप्रभु से पूछा मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। फिर सुबुद्धि रॉय वृंदावन में आए और अपनी छोटी आमदन से विधवाओं की सेवा की। तो महाप्रभु का जब संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ तो मुसलमान ने धमकी दी कांधी ने मैं तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दूंगा। तो महाप्रभु के भक्त डर गए। भक्तों ने सूचना दी कि क्या बीता था। सूचना दी महाप्रभु ने कहा घबरा मत, हम चांद काजी के पास मोर्चा लेकर चलेंगे। हर घर में सजाओ, कीर्तन करो और एक बड़ा मोर्चा लेकर महाप्रभु आगे बढ़े चांद काजी के पास। और महाप्रभु के मोर्चे में लाखों भक्त थे, इतनी लंबी लाइन किलोमीटर। प्रभुपाद जी कहते हैं असल में नॉन वायलेंट मूवमेंट भारत में महाप्रभु ने शुरू किया था, गांधी जी ने नहीं। तो जब चांद काजी ने देखा महाप्रभु सबको ले गए मोर्चा में फायर लाइट बत्ती सब जलाकर। तो जब वो पहुंचे चांद काजी के महल में चांद काजी घबरा गया, छुप गया। जब उसे देखा लाखों लोग मेरे घर के आगे खड़े हैं और जो चांद काजी के साथ आदमी थे महाप्रभु के साथ उन्होंने बगीचा खराब कर दिया। आखिर चांद काजी सामने आया, महाप्रभु उसकी चर्चा हुई। चांद काजी ने महाप्रभु के गुस्से को कम करने के लिए कहा नीलंबरा चक्रवर्ती तुम्हारे दादाजी मेरे अंकल माने जाते हैं। वहां बड़ा गहरा सम्मान था। और अगर चाचा को गुस्सा आए तो भतीजा शांत कर देता है, भतीजे को गुस्सा आए तो चाचा शांत कर देता है। खैर दोनों का वार्तालाप हुआ। यानी महाप्रभु ने कहा ये क्या धर्म है जब माता पिता का वध किया जाता है। गाय के द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है, वहीं सात माताएं हैं शास्त्रों के अनुसार। सात असली माता गुरु की पत्नी, सात माताओं के अलावा मैं एक गाय माता गिनी जाती है, और बैल जिसके सहयोग से अन्न का उत्पादन होता है। तो महाप्रभु की दिव्य इस प्रकार की चर्चा हुई। महाप्रभु ने कहा एक विश्वास दीजिए कि भविष्य में आप और आपके प्रतिनिधि कभी यह संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकोगे। चांद काजी ने स्वीकार किया कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें काफी कमियां हैं, पर आपके वैदिक साहित्य में कमी नहीं। तो इस प्रकार चर्चा हुई। तो महाप्रभु ने एक निवेदन किया कि आप ये विश्वास दीजिए कि भविष्य में कोई भी आपका प्रतिनिधि या सरकार का अधिकारी संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा। तो चंद काजी ने कहा जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधि द्वारा तुम्हारे मृदंगा को तोड़ाया था उस दिन रात को मुझे सपना आया, एक आधा पुरुष आधा पशु शेर आया मेरे पास, तेज नाखून के साथ मेरे शरीर को चीर रहा। ये देखो ये निशाने। और कहा अगर तुमने भविष्य में कभी रोका निमाय के सम की तरह आंदोलन को तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, पूरा चीर दिया जाएगा। तो किचन करें अभी मैं घबरा गया हूं। तो इस प्रकार काफी लंबी कथा हुई। महाप्रभु ने बहुत लंबे सफर समय के लिए कीर्तन करा। इसके पश्चात महाप्रभु को प्यास लगी। तो महाप्रभु को जब प्यास लगी और पानी पीने कहाँ गए, जब प्यास लगी और पानी पीने गए कहाँ, हाँ भेजे श्रीधर के घर, वही झूठा प्याला जिसमें खोले हुए थे श्रीधर पानी पीते थे, वहां पर उन्हें वही प्याला लिया, उसे पानी पीने लगे। खोले हुए श्रीधर ने कहा, महाप्रभु क्या कर रहे हो, ये झूठे मेरे झूठे प्याले से पानी पी रहे हो। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। महाप्रभु का इतना स्नेह था अपने भक्तों के प्रति, महाप्रभु ने कहा मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं, अपना उद्धार कर रहा हूं। महाप्रभु ने कहा था ना खोले बजे सीधा को, एक दिन मैं पूरे विश्व को बताऊंगा तुम कितने धनी हो। महाप्रभु ने ये बताया कितने धनी है कि महाप्रभु उसके घर में आए, उसके प्याले से पानी पिया। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को मिलने हैं। एक समय सनातन गोस्वामी गए थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए रास्ते में झारखंड जंगल से गुजर कर गए थे, और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनके पूरे शरीर में पस थी, फुंसी से भरा हुआ था उनका शरीर। महाप्रभु जब उधर आए, महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी मिले महाप्रभु, सनातन गोस्वामी सोच रहे थे आज मेरा शरीर निकम्मा हो गया है, वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी महाप्रभु को मिलने, मेरा शरीर निकम्मा हो गया है, फुंसी पस से भरा हुआ है, मैं रथ के नीचे आत्महत्या कर लूंगा। महाप्रभु समझ गए, महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और उनकी बीमारी तुरंत दूर हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं, जिनका ज्ञान आप तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उन्हें प्राप्त करते हो। एक है चैतन्य मंगल जिसकी रचना लोचनदास ठाकुर ने की, एक है चैतन्य भागवत जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, और एक है चैतन्य चरितमृता जिसकी रचना कृष्णदास कावड़ा ने की। कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य संभव हो जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाता है। तो और ये भी कहा गया चैतन्य चैतन्यता में, जो व्यक्ति महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेगा, आज आपने कई लीलाओं को सुनी है, जो व्यक्ति महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेगा उसके लिए कठिन कार्य सरल हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मन मन भाव मन भक्त हमारे आजी माम नमस्कुरु मम वाचि सत्यम देव प्रति जने, मेरा भक्त बनो मेरा चिंतन करो। हमें महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, महाप्रभु के महाप्रभु की लीला का स्मरण करना चाहें, महाप्रभु के उपदेश का स्मरण करना चाहें, माँ और उनकी कृपा से कठिन कार्य जो है सरल हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक मार्ग को बहुत ही सरल बना दिया। जब चैतन्य महाप्रभु एक समय वाराणसी गए थे, वहाँ चंद्रशेखर नाम के भक्त घर में निवास कर रहे थे। चंद्रशेखर भौतिक दृष्टि से नीची जाति का था, आजकल हिंदुस्तान में हम ऊंची जाति नीची जाति की बात करते हैं, है ना, हम लड़ते हैं कि नीची जाति में हमारा नाम गिना जाए, फिर दाखला वगैरह जल्दी मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो चंद्रशेखर नीची जाति का था ना, जब भी महाप्रभु उसके घर में क्यों ठहरे, क्योंकि वो भक्त था। हमारे भक्ति के सिद्धांत में जो भक्त है वो ऊंची जाति है, जो अभक्त है वो नीची जाति है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं काला पैसा सफेद पैसा क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक। हमारा सिद्धांत है सब जो भगवान की सेवा में उपयोग करे वो व्हाइट है, और जो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करे वो ब्लैक है। ठीक है, तो ये तो महाप्रभु चंद्रशेखर के साथ एक और भक्त है तपन मिश्रा। तपन मिश्रा चैतन्य महाप्रभु को बांग्लादेश में मिले थे, जहां उन्होंने पूछा था कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और महाप्रभु ने कहा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध भक्ति, ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, और ये प्राप्त हो सकती है हरि नाम के द्वारा। फिर महाप्रभु के कहने पर महाप्रभु ने तपन मिश्रा को वाराणसी भेजा। जब महाप्रभु वाराणसी आए तो चैतन्य महाप्रभु और तो तपन मिश्रा चंद्रशेखर ने कहा हम सह नहीं सकते, आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है, सारे सन्यासी कह रहे हैं, देखो ये क्या सन्यासी है, पागलों वेदांत सूत्र पढ़ने की बजाय पागलों जैसे नाच रहे और गा रहा है, हम ये सह नहीं सकते। भक्त जो है अपनी बेइज्जती सह लेगा पर दूसरे की बेइज्जती नहीं, खास करके भगवान की बेइज्जती नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एक सभा हो आपकी इंसान मरी सन्यासियों के द्वारा। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही उच्च कोटि के मायावादी गुरु थे, जिनके हजारों शिष्य थे। तो एक ब्राह्मण था जिसने इन सन्यासियों को अपने घर में निमंत्रण दिया था। वो महाप्रभु के घर में आए, चंद्रशेखर के घर में आए महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए। महाप्रभु अक्सर जाते नहीं थे किसके घर में, महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया उनके घर जाने के लिए, और महाप्रभु उनके घर में गए। ये जो मायावादी सन्यासी थे सब ऊंचे स्थान में बैठे हुए थे, और महाप्रभु जब गए वो बैठे जहाँ की पांव धोते लोग जैसे मंदिर में आने से पहले। तो वो और महाप्रभु जब आए, हालांकि ये मायावादी सन्यासी थे, महाप्रभु ने सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात महाप्रभु ने अपने दिव्य लक्षण प्रकट किए। उन्होंने अपने चेहरे के द्वारा इतना प्रकाश प्रकट किया जो कि लाखों सूर्यों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। तो जब इन सन्यासियों ने देखा महाप्रभु के चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है, वो हैरान हो गए। उन्हें कहा कैसे संभव है। फिर उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हो, आप हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने देखा मुझे और कहा तुम्हारे में योग्यता नहीं है, केवल यह हरि नाम के उच्चारण की योग्यता है। हरि नाम है केवल नाम कलो न सेवा न, केवल ये योग्यता है। और आगे ने मायने कहा कि और कोई योग्यता नहीं है मेरे में। और मैंने कहा ये बात सच है, जब से मैंने हरि नाम किया है कभी मैं नाचता हूं, कभी मैं गाता हूं, कभी हंसता हूं, ये महामंत्र का जादू, महाप्रभु के प्रचार से सारे सन्यासी प्रभावित हो गए। और हाजी सारे हजारों शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वैष्णव बन गए। महाप्रभु ने अपने प्रचार से सबको वैष्णव बना दिया। महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, झारखंड जंगल में गए, झारखंड जंगल में पशुओं से भी हरि नाम करवाया, हाथी शेर टाइगर पक्षियों सबसे हरि नाम करवाया। महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा थी, सबको उन्होंने भक्त बना दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ सारे भक्त जो थे क्या बन गए, वैष्णव बन गए। एक बुद्धिस्ट गुरु था जिसे महाप्रभु ने हराया था डिबेट में, तो ये बुद्धिस्ट भक्त जो थे उन्होंने सोचा इसने हमारी बेइज्जती की है हमारे गुरु की, हमें बदला लेना चाहिए। तो अगले दिन एक पीतल की थाली में सड़ा हुआ भोजन रखकर महाप्रभु के पास आए, ये महाप्रसाद हम लाए हैं आपके लिए, लीजिएगा। तो जैसे वो पीतल की थाली महाप्रभु को दे रहे थे, एक चिड़िया आई जिसने पीतल की थाली को उठा लिया और जो सड़ा हुआ खाना था ये बुद्धिस्ट के सिर पर गिर गया। और जो पीतल की थाली थी चिड़िया ने ऊपर से खूब फेंकी तो गुरु जी के सिर पर गिर गई। और जब वो भारी थाली गुरु जी के सिर पर गिरी तो गुरु जी बेहोश हो गए। तो उनके शिष्य घबरा गए, अरे हमारे अपराध के कारण देखो क्या परिणाम, हमारे गुरु जी का जीवन खतरे में है। तो सारे शिष्य गए, अब चाहिए हमारे गुरु जी को मरने वाले हैं, ये हमारा ये दोषी भाव था। महाप्रभु ने कहा जाओ गुरु के कानों में हरि नाम का उच्चारण करो। तो वो गए, गुरु तो बेहोश थे, हरि नाम का उच्चारण किया जिसके द्वारा गुरु जी होश में आ गए और सारे बुद्धिस्ट वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं, तो हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए, चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए। जब महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने, वो अपने साथियों को छोड़कर आगे तेजी से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी रास्ते में, जब उन्हें प्यास लगी तो वहाँ एक ग्वाला लस्सी बेच रहा था। महाप्रभु ने उसके मटके को लेकर सारी लस्सी पी ली। फिर ग्वाला ने कहा पैसा? महाप्रभु ने कहा मेरे साथ ही पीछे आ रहे हैं वो पैसा देंगे। जब नित्यानंद जी वगैरह पहुंचे तो उस ग्वाले ने कहा तुम्हारे एक सन्यासी आए थे जो सारी लस्सी पी गए और कहा कि आप पैसे दोगे, पैसा दीजिए। नित्यानंद ने कहा हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो ग्वाले ने कहा ठीक है अभी मैं घर जाता हूं, चलो सन्यासी को कह देना वो लस्सी मेरे तरफ से दान थी। तो सन्यासी मटका उठाकर घर जाने की योजना बना रहा था। तो जब वो मटका उठाने गया तो इतना भारी था
कि वो आश्चर्य हो गया, इतना भारी मटका कैसे हो गया।
बोले लस्सी तो सब खत्म हो गई थी, तो उसने अंदर देखा, वो देखा कि उसका खाली मटका भर गया था हीरे मोतियों के साथ। हीरे मोतियों के साथ भर गया था, भगवत प्रेम भी उत्पन्न हो गया था, वो हरि नाम का जाप भी शुरू करना लगा। तो महाप्रभु की सेवा करके लाभ ही है धारी ने। तो आज बड़ा शुभ अवसर है हम भक्तों को महाप्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। और महाप्रभु ने वैसे तो बड़ी गहरी शिक्षा दी है, पर पांच विषयों पर बल दिया। साधु संग, नामा कीर्तन, भागवत तप का अध्ययन, आचार्य विग्रह की पूजा श्रद्धा से और धामवासी। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संगत में रहें, खास करके उत्तम भक्तों की संगत। भक्तों की संगत में रहोगे तो आपको असली उपदेश मिलेगा। असली उपदेश क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा हरि नाम करो, भागवत का अध्ययन करो, भागवत नाम और चैतन्य चरितमृत, भगवान के आचार्य वगैरह की उपासना करो, और जहाँ हो वहीं हरि नाम का जाप करोगे तो वह धाम बन जाएगा। आपका बॉम्बे तो धाम है ही, आप कहोगे क्यों, प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में इतना समय काटा, ये धाम है ही। तो इन पांच कार्यों का पालन करोगे तो भक्ति सरल हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जतना गणा दिग्राम, विश्व के हर कोने में हरि नाम पहुंचेगा। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से हरि नाम हर जगह पहुंच गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड जंगल में पशुओं द्वारा हरि नाम करवाया, जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे तो समाज का वातावरण पशु जैसे था, सब जुड़े हुए थे, प्रकार के गल कार्य थे। तो ये हरि नाम के माध्यम से प्रभुपाद ने उन्हें जोड़ा और सब भक्त बने। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। एक भाव ये था कि देखेंगे राधा रानी का कितना गहरा आकर्षण है भगवान के प्रति, दूसरा भाव ये था समाज में भक्ति का भाव, भक्ति का ज्ञान दिया जाए। और क्योंकि भक्ति के असली भक्ति के ज्ञान के माध्यम से ही आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हो, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं। त्रेता द्वारा सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान का चिंतन। एक एक लाख साल, 60 साल भगवान का चिंतन करते थे। फिर आया त्रेतयुग में। त्रेतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ। द्वापर युग में महंगी भेंट, आपको बोला जाए मंदिर आओ दर्शन के लिए पर लाख रुपए का सोना मिलाना साथ। तो कलयुग में वही लाभ प्राप्त हो सकता है हरि नाम के माध्यम से। तो हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, तो अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहें तो ध्यान पूर्वक जाप करना चाहें। तो हमारा ये प्रयास है ना, ध्यान पूर्वक जाप करें। क्या जाप? हरे कृष्णा कृष्णा ध्यान पूर्वक जाप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जीवन में सफल बना पाएंगे। तो ये प्रार्थना करोगे भगवान से, क्या प्रार्थना? न जन्म न जन्म न सदनम कविता माँ जगदीश को है अमा जन्मेश्वरी भवदा भक्ति रहित गीताए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तिनादपि सुनि चेना तरोरपि साष्णा मानी न माना देना। अगर तुम सदा कीर्तन करना चाहते हो क्या भाव होना चाहिए? घास से भी ज्यादा पतित, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, और आदर की उम्मीद किए बिना लोगों को आदर देना। ये भाव रहेगा तब सदा हरि का नाम ले सकोगे। ये भाव रहेगा नहीं, हम कितने बड़े भक्त हैं, सबको हमें सलाम करना चाहिए, ये हरि नाम नहीं निकलेगा। तो ये भाव रहेगा कि हम तो सबके दास हैं, दासों के दास हैं, दासों के दास के दास के दास हैं, फिर ये हरि नाम द्वारा चेतो दर्पण मार्जन प्राप्त होगा और आनंद बुद्धि वर्धन प्राप्त होगा। तो गौरंगा महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं, उनकी भविष्यवाणी थी पृथ्वी के हर कोने में हरिनाम पहुंचेगा, जो प्रभुपाद जी के प्रयास से हर कोने में पहुंच गया है। तो गौरंगा महाप्रभु की शरण लो। गौरंगा 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 गौरंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Okay, what's next? Let me stop. Any questions? I stop now. There's no drama now. Okay, one and last question. Yes.
Hare Krishna Guru Maharaj. Maharaj, जब हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, तो पतित किनको बोला गया यहाँ पर? जो लोग अज्ञानतावश भौतिक कार्यों में लगे हैं उन्हें पतित बोला गया, या फिर जो डुप्लीकेसी करते हैं, हिपोक्रेटिक हैं?
ये सब सब दोनों पतित हैं, जो डुप्लीकेसी करते वो भी पतित है, और जो भगवान की शरण नहीं लेता वो भी पतित है।
लेकिन महाप्रभु जो वैष्णव अपराधियों को उनका उद्धार नहीं करते।
पर अगर वैष्णव अपराधी सुधर जाए तो उनका उद्धार भी हो सकता है। ये संस्था है पतितों का उद्धार के लिए। इस संस्था में भक्त हैं जो कसाई थे पहले, हमारे एक अमेरिकन सन्यासी भक्त हैं जिनके दादाजी कसाई थे। तो ये है पतितों के उद्धार के लिए। तो चाहे कुछ भी दोष हो, हरि नाम लो, नियमों का पालन करो, जीवन सुधर जाएगा। ओके ओके ओके। लास्ट एक और क्वेश्चन, बस दो घंटे हो गए यही तीन देर बैठना।
कृष्ण महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कि कृष्ण रूप में चैतन्य महाप्रभु हर चतुर्युग में आते हैं कि कई युगों के बाद आते हैं?
शायद हर युग में आते हैं।
चैतन्य महाप्रभु का जो रूप लेके भगवान इतने दयालु अवतार हैं, तो क्या हर चतुर्युग में आते हैं या बहुत हजारों हजारों युगों के बाद आते हैं?
खोजना पड़ेगा। मैं क्या था, हर युग में आते हैं। ओके, हरे कृष्ण हाल महामंत्र का जाप कीजिएगा। सब सब जाप करना, गपे नहीं मारना।
हरे कृष्णा। तो आज आप लोग सब एक सेट चैतन्य चरितामृत का ले सकते हैं, महाराज जी खुद साइन करेंगे। तो बुक स्टॉल खुला है, जिन भक्तों को लेना है वो ले सकते हैं, और आज एक स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा सबको, 10% डिस्काउंट मिलेगा चैतन्य चरितामृत सेट पर। और महाराज यहाँ पे महाराज खुद साइन करेंगे, तो आप सब जाके एक कॉपी ले सकते हैं अपने लिए। हरे कृष्णा। आप सेट लेके महाराज के रूम में आ सकते हैं, महाराज साइन करेंगे।
अखंड नाम संगीत रात राति सारा
प्रभु मैं थोड़ा गा लूं पहले फिर आप गा लूं मेरे को मेंबर बनने जाना है रात
अरे वो ठीक किया था पहले अगर मैं क्या बोल रहा था अंकी बिहारी लाल की
हरे कृष्ण श्री निताय गौरंग महाप्रभु की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
बोल
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna. Hare Krishna